नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने से देश में जीवन यापन और व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विधेयक विश्वास पर आधारित ढांचे को मजबूत करता है। संसद ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा ने इस विधेयक को बुधवार को पारित कर दिया था। ये विधेयक जीवन यापन और व्यापार सुगमता के लिए विश्वास पर आधारित शासन को और मजबूत करने के लिए कुछ कानूनों में संशोधन करता है, ताकि कुछ अपराधों को गंभीर अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सके और उन्हें तर्कसंगत बनाया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि संसद में जन विश्वास विधेयक 2026 का पारित होना जीवन और व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये विधेयक कई कानूनी प्रावधानों को कम करके सभी के लिए जीवन को आसान और व्यापार को सरल बनाकर प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत के सपने को साकार करता है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। राज्यों को जमाखोरी, हेराफेरी और घबराहट पैदा करने वाली गलत सूचनाओं के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखने की भी सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं, कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इस बीच पश्चिम एशिया में जारी संकट को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून तक सीमा शुल्क में पूर्ण छूट देने का निर्णय लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में कच्चे तेल की उपलब्धता सामान्य है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।
हमारी रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए सल्फर की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे रिटेल आउटलेट्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद भी पंप के प्राइजेस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। भारत सरकार ने प्राइजेस को स्टेबल रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन किया है और कुछ भार हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी उठा रही हैं।
विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों पक्षों ने व्यापार, उद्योग, ऊर्जा, उर्वरक, संपर्क और आवागमन के साथ साथ प्रौद्योगिकी, नवाचार और महत्वपूर्ण खनिजों में नए अवसरों पर केंद्रित व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को एक अलग श्रेणी के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय घोषित किया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में UGC पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया था। इसके बाद UGC विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया गया और NCERT को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में कालियाचौक हत्याकांड की कथित मुख्य साजिश रचने वाले मुफक्करुल इस्लाम और एक अन्य व्यक्ति को सिलीगुड़ी के बागडोगरा से गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को कालियाचौक में मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने की मांग को लेकर उमड़ी भारी भीड़ ने न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया। केंद्रीय बलों द्वारा उन्हें रोकने के दौरान भीड़ ने वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के सबसे ऊंचे B-1 पुल को नष्ट कर दिया गया है। उनका ये बयान ईरान को पाषाण युग में धकेलने की धमकी देने के कुछ घंटों बाद आया है। श्री ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर इस विस्फोट का वीडियो भी साझा किया है। उन्होंने ईरान से जल्द अमेरिका के साथ समझौता करने की बात कही है। सैफ U20 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। मैच मालदीव के माले में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।